प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 15 मार्च 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान प्रिय साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं शिवांशु सिंह कुशवाहा, आप रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं। पुष्पेंद्र राजपूत, आप खुरई मध्य प्रदेश से हैं। आमिर सज्जाद, आप मोतिहारी बिहार से हैं। रमन कुमार यादव, आप भागलपुर बिहार से हैं। और संतोष कुमार जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो शिवांशु, पुष्पेंद्र, आमिर, रमन और संतोष, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आइए अब हम आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। और बट नेचर की शुरुआत की न्यूज एनालिसिस आधारित होती है रेडियो न्यूज पर, स्पेशली रेडियो न्यूज को ही मैं आधार बना करके चलता हूं। मित्रों ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। हाँ, जो दूरदर्शन के न्यूज हैं, जो चैनल के न्यूज हैं, वो मैं देखता सुनता जरूर हूं, तो रेडियो न्यूज में उसका सपोर्ट मुझे मिल जाता है, वहां से भी मैं चीजें लेकर के आपके सामने रखता हूं। लेकिन जो मेरा आधार है, जो बेस है, वह मूलतः रेडियो न्यूज ही होती है। और वह होती है रात 9:15 से 9:15 बजे जो हिंदी इंग्लिश में आती है 15-15 मिनट की वह न्यूज। तो मित्रों आज भी मैं आपसे कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो खासकर अभी 5 राज्यों में हुए चुनाव पर आधारित था। कल मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को लेकर आपसे कुछ बातें की थी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार बनाने की बात कही गई है, चाहे वो केंद्र में सरकार हो चाहे वो राज्यों में सरकार हो। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों के चुनाव में किस तरह से गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर के एक संवैधानिक एक विवाद सा कह लीजिए, संकट तो नहीं है, विवाद खड़ा हुआ। और फिर आपने देखा कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने खासकर गोवा के मामले में साफ कह दिया कि वो राज्यपाल को आदेश नहीं दे सकते, राज्यपाल को के विवेक पर है। उनको लगा कि हाँ यहां बीजेपी सरकार बना सकती है। यही स्थिति आप मणिपुर में भी देख रहे हैं, हालांकि मणिपुर में भी और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आई है, लेकिन कॉलिशन करके उसे दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। उसके आधार पर उसने अपनी बहुमत की सूची क्योंकि राज्यपाल को सौंप दी, तो राज्यपाल उससे आप कह लीजिए इंश्योर हो गए कि हाँ ये अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। और उन्होंने दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कह दिया, हाँ उन्होंने एक परिवर्तन जरूर किया गोवा के मामले में कि राज्यपाल ने गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर जी को 15 दिन का समय दिया था कि आप 15 दिन में अपना बहुमत सिद्ध करें, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कम करके केवल 2 या 3 दिन का ही वक्त रखा और 16 तारीख को कल यानी कि वो बहुमत सिद्ध करेंगे 11 बजे अपने विधानसभा के फ्लोर पर। यहां तक की स्थिति हम देख चुके हैं मित्रों, और इसके बारे में आज अखबारों में भी कुछ लिखा है और इसको लेकर के अभी बातें होंगी भी, तो इसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है, क्योंकि इस सरकारों के जो गठन का मामला है इसमें बहुत बड़ी पॉलिटी भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, पॉलिटिक्स को आजकल लोग थोड़े से दूसरे अर्थों में लेने लगे हैं, इसलिए मैं स्पेशली पॉलिटी की बात कर रहा हूं, यानी कि जो संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसको राजनीतिक दल किस प्रकार से लागू करते हैं, उसे मैंने यहां पॉलिटी कहा है। तो मित्रों जिस तरह की हम राजनीतिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं, तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो छोटे राज्यों में बहुमत को लेकर के इस तरह के संकट पैदा होते हैं कि जब बिल्कुल ही एकदम कंधे से कंधा मिलाकर 2 पार्टियां स्थान हासिल करती हैं और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। दोस्तों अब जो चुनाव हुए हैं उसको मैं एक दूसरे एंगल से आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें भारतीय राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है और आपको इस बात की जानकारी होनी भी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने पहले की थी, अब वो लगभग प्रमाणित हो गया है, तो अब उसी को थोड़ा समय विस्तार से आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों आपने देखा दो तीन चीजें आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही होंगी। पहली बात तो यह कि अब जो पब्लिक है उसने चुनाव में दो तत्वों को ऑलमोस्ट नकार दिया है, दो सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर जो हमारे चुनाव के होते थे उसको ऑलमोस्ट नकार दिया है, और खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव ने इस बात को ज्यादा गहराई से सिद्ध किया है, ज्यादा यथार्थ तरीके से सिद्ध किया है। और उत्तर प्रदेश के द्वारा सिद्ध किया जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए इस बात को इतनी तरजीह दी जा रही है। अभी तक जो हमारे चुनाव हुए हैं, अगर हम आजादी के बाद से अब तक को लें, और आगे भी होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसकी प्रोमिनेंसी खत्म हो जाएगी, हां कम जरूर हो जाएगी, उसके दो सबसे बड़े आधार रहे हैं फ्रेंड्स। पहला है जाति और दूसरा है धर्म। जाति का मतलब है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती थी, राजनीतिक दल कोशिश करते थे कि वहां वो उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करें, ताकि वो अपने जाति के लोगों का वोट हासिल कर सके, और इस तरीके से मतदान होते भी थे। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसी पर आधारित जाति हितों को ध्यान में रख कर ही राजनीतिक पार्टियां बनी, उन्हें सफलता भी मिली और लंबे समय तक उन्होंने शासन भी किया। देखिए, जाति हो या न हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जाति पर आधारित कोई राजनीतिक दल बनता है, धर्म पर आधारित कोई राजनीतिक दल बनता है, तो आप राजनीतिक दल को अमान्य नहीं ठहरा सकते। हां, यह बात अलग है कि वो जाति और धर्म के नाम पर खुलेआम वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी यही है कि लोग अपने अपने हित समूह बनाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया, अपना जाति के आधार पर बना लिया, जैसे बहुजन समाज पार्टी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, एआईडीएमके डीएमके भी जब साउथ में बने थे उनको ले लीजिए। तो जाति और धर्म पर अगर कोई आधारित राजनीतिक पार्टी है तो वह अमान्य नहीं है। हां, मत उसके आधार पर वोट मांगना जरूर अवैधानिक है, जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार गलत है। तो मित्रों, आप देखें कि यूपी में बहुत लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी, जो खासकर दलितों और निम्न तबके को आधार लेकर के चल रही थी, इस चुनाव में उसको बहुत बुरी तरह से नकार दिया गया है। मतलब सोचिए कि 403 में अगर उसे कुल 18 सीटें शायद मिली है तो 5% भी वो नहीं है। और कब, यही बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में राज्य कर चुकी है। समाजवादी पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी ने इससे ऊपर के लोगों को लिया, उन्होंने यादव को लिया, उन्होंने ओबीसी को लिया और मुस्लिम समुदाय को भी लिया, ये उनका एक वोट बैंक, सो कॉल्ड हम कहते हैं वोट बैंक था, इनको लेकर के राजनीतिक पार्टी आगे चल रही थी। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी को भी इस बार की जनता ने नकार दिया, और सामूहिक रूप से नकारा, क्योंकि कांग्रेस के साथ उसका अलायंस था। कांग्रेस की तो हालत बहुत बुरी हो ही चुकी है उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं। अब ये तो जाति पर आधारित राजनीति को नकारा है, दूसरी बात मैंने कही धर्म पर आधारित राजनीति। देखिए, हम जब धर्म की बात करते हैं राजनीति के संदर्भ में, तो सीधे हिंदू और मुसलमान दो की ही बात आती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे सिख, सच पूछे तो वो हिंदू धर्म के ही अंग हैं, जैन को ले लीजिए हिंदू धर्म के अंग है, बौद्ध को ले लीजिए हिंदू धर्म के अंग है, ये बात अलग है कि कुछ लोग उनका अलग तरीके से भी वो लेकर के चलते हैं। जो ईसाई है वो राजनीतिक रूप से इतने शक्तिशाली नहीं है संख्या की दृष्टि से कि वो भारतीय राजनीति पर कोई बहुत जबरदस्त प्रभाव या पकड़ बना पाते हो, और वो सच पूछे तो एक ईसाई धर्म की जो अप्रोच भी है ना, वो बड़ी डिफरेंट किस्म की अप्रोच है ना, वो मिलजुल कर चलना है, रहना है, करना है, उनको अपने जीवन से मतलब है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, समाज में घुल मिल गए हैं, है ना, उनकी एक अलग तरीके की अप्रोच होती है। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो मूलतः हमारे सामने हिंदू और मुस्लिम, ये दो धर्म, इस्लाम, ये दो धर्म आते हैं। इस्लाम को लेकर के अलग राजनीतिक पार्टियां बनी है, हिंदू धर्म को लेकर के भी अलग, या हिंदू संस्कृति को लेकर या भारतीय संस्कृति को लेकर के राजनीतिक पार्टी भी हैं, सांस्कृतिक संगठन भी हैं, तो ये दोनों में बराबर चल रहा है। ये अभी तक माना जाता था मित्रों कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये मूलतः एंटी मुस्लिम है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है, क्योंकि वो भारतीयता की बात करती है, भारतीय संस्कृति की बात करती है, हिंदू संस्कृति की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। तो ये तो मुस्लिम वर्ग भी इससे थोड़ा सा छिटकता था, दूर रहता था, कि उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए तो हमारे खिलाफ बातें होने लगेंगी, हमारे हितों पर बहुत चोट पहुंचेगा, और तरह तरह के दूसरी पार्टियां प्रचार भी करती थी। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में होता यह है कि जहां मुस्लिम बहुल लोग हैं वहां मुस्लिम मतदाता मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए जाए, ताकि जो मुस्लिम मतदाता है वो थोड़े से इंश्योर हो सकेंगे कि हाँ हमारे ही धर्म का प्रतिनिधि है तो हमारे हितों की रक्षा करेगा, ये मानकर चला जाता था। यह धर्म आधारित राजनीति थी और अभी तक ये चल भी रही थी, काफी कुछ हो भी रहा था। इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आप देखिए, पहली बात है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने 100 करीब मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे जिसमें से केवल 3 लोग जीते, और ये मुस्लिम उम्मीदवार वहां खड़े किए गए थे जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, जहां मुस्लिम मतदाता जिताने और हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत विचित्र सी स्थिति की कि उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, और उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे, जहां मुस्लिम मतदाता एक तरीके से मायने रखते थे, बिना उनके समर्थन के आप चुनाव नहीं जीत सकते। इसका मतलब यह हुआ देखिए कि दोनों चीजें यहां स्पष्ट हो गई हैं। पहला तो कि भारतीय जनता पार्टी ने उस बैरियर को तोड़ दिया कि जाति और धर्म के ही उम्मीदवार खड़े किए जाने चाहिए। देखिए इसे कुछ लोग इस रूप में भी एनालिसिस कर रहे हैं, और इस तरह की एनालिसिस होती ही रहती है और की भी जानी चाहिए, यही लोकतंत्र है और यही सच पूछे तो इंटेलिजेंसिया भी है, यही तर्क वितर्क भी है कि साहब इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, उसने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, इस तरीके से भी उसका विश्लेषण हो रहा है। एक विश्लेषण इस तरीके से भी हो रहा है कि उसने जो जाति पर आधारित जो संतुष्टिकरण की नीति थी मुस्लिम को लेकर के उसको तोड़ करके दिखाया, और बल्कि इससे भी बड़ी बात है कि मुस्लिम मतदाताओं ने भी ये दिखा दिया कि नहीं नहीं हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमारा मुस्लिम उम्मीदवार ही हो, हम तो सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, जो भी हमारे विकास को सुनिश्चित करेगा वो हमारा रियल प्रतिनिधि होगा। इसका मतलब है कि मतदाताओं ने भी और भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी ने भी यहां धर्म के खिलाफ एक शुरुआत की है और उसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आए हैं। तो ये दो बहुत बड़े परिवर्तन भारतीय राजनीति में दिखाई दे रहे हैं, लोकतंत्र में दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो है विकास की राजनीति। चूंकि अब आप जाति को रिजेक्ट करेंगे, आप धर्म को रिजेक्ट करेंगे, आप और दूसरे क्षेत्र को रिजेक्ट करेंगे, भाषा को रिजेक्ट करेंगे, तो फिर इनका रिजेक्शन का रिप्लेसमेंट किससे होगा? तो उस रिप्लेसमेंट के लिए अब जो चीज आ रही है आजादी के 70 सालों के बाद लगभग, मुझे लगता है कि वो सही चीज आ रही है, वो है डेवलपमेंट, विकास। वी नीड डेवलपमेंट। आपके काम ऐसे हों कि हमारी जिंदगी में कुछ बेहतरी हो। इसका मतलब है कि सही मायने में अब हमारा जो लोकतंत्र है इस रूप में मैच्योरिटी पर आ रहा है। अदरवाइज तो भारतीय लोकतंत्र शुरू से ही मैच्योर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ते हैं, आप देखिए इमरजेंसी के बाद लोगों ने सत्ता पलट दी, वो भारतीय राजनीति के परिपक्व होने का ही प्रमाण है। मैच्योर तो रही है, लेकिन ये जो छोटे छोटे जो विषाणु थे, जो वायरस थे हमारी डेमोक्रेसी में, जो हमारी डेमोक्रेसी को इन्फेक्ट कमजोर करते थे, उसके इम्यून पावर को कमजोर कर रहे थे, लग रहा है कि उससे जरूर अब हमारी राजनीति या हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारे लोकतंत्र का एक जो नया स्वरूप इससे इमर्ज हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। एक और जो न्यूज में जो बात थी वो शेयर मार्केट को लेकर थी। आपने सुना कि शेयर मार्केट एक दिन में 500 समथिंग पॉइंट बढ़ गया, पिछले 2 सालों में एक दिन में पहली बार इतनी वृद्धि हुई है, रुपया भी मजबूत हुआ, ये सारी खबरें आपने सुनी। दोस्तों शेयर मार्केट थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं यहां तो समझाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट रहे क्लास के वो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। मैं आपके थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए चुनाव का शेयर मार्केट से क्या संबंध है। सच पूछे तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका संबंध शेयर मार्केट से न हो, हर चीज का संबंध शेयर मार्केट से होता है। इसका संबंध इस बात से है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में मतलब उसका खाता ही नहीं खुला बल्कि पहली बार उसकी सरकार भी बन गई है। इसका मतलब है कि जो अभी सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वो बहुत मजबूत है, लोग उसके प्रति विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, लोगों का समर्थन उसके पास है। इसका मतलब है कि सरकार स्थिर है। स्थिर तो वैसे भी है बहुमत के आधार पर, केंद्र में सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इससे लोगों को अब यह अनुमान लग रहा है कि नहीं, जो 2019 के भी चुनाव होंगे उसमें भी यही राजनीतिक दल फिर से सरकार बना सकती है, बनाएगी, अब वो इंश्योर हो रहे हैं। तो जब किसी भी देश में राजनीतिक दल स्थिर होते हैं तो फिर उसकी जो नीतियां होती हैं वो लंबे समय तक के लिए होती हैं, और उन नीतियों का सीधे सीधे प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब हमारा जो औद्योगिक जगत है वो इस बात को महसूस कर रहा है कि हमारे पास एक स्थिर सरकार है, और अब जो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो कुछ और सुधार होने चाहिए थे जो किसी वजह से नहीं हो पाए हैं, अब चूंकि सरकार को एक तरह से फिर से मैंडेट मिल गया है राज्यों के माध्यम से, जनता का विश्वास मिल गया है, तो सरकार उस दिशा में अब मजबूती के साथ कदम बढ़ाएगी। मतलब उसको अब अपने राजनीतिक अस्तित्व की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे श्रम सुधार की बात होती है, लेबर रिफॉर्म होने चाहिए, अब सरकार हो सकता है कि उस दिशा में आगे बढ़े। डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है, ये चुनाव ये भी बताते हैं कि लोगों ने डिमोनेटाइजेशन, जो विमुद्रीकरण की नीति थी सरकार की, उसका समर्थन किया है। तो सरकार हो सकता है कि काले धन के विरुद्ध और कुछ कठिन कदम उठाए। बेनामी संपत्ति का मामला आपने देखा होगा कि फिर से न्यूज में आ रहा है, डीडी न्यूज वगैरह में भी आ रहा है कि बेनामी संपत्ति के मामले में सरकार और हार्श हो सकती है, कठोर हो सकती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर आप काली अर्थव्यवस्था को कम कर सकेंगे, उसको नियंत्रित कर सकेंगे, मिनिमाइज कर सकेंगे, जीरो करना तो बड़ा असंभव सा लगता है, तो उसका इम्पैक्ट जो हमारी मूल अर्थव्यवस्था है, सकारात्मक इम्पैक्ट तो उसका आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो हमारे औद्योगिक जगत के लोग हैं इसे एक बहुत ही एक पॉजिटिव इंडिकेशन के रूप में ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि शेयर मार्केट में तेजी आएगी और उसी का रिफ्लेक्शन यहां आपको कल के शेयर मार्केट में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक तीसरी छोटी सी खबर थी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो केंद्रीय न्यायालय है कह लीजिए, उसने धार्मिक प्रतीकों को धारण करने के मामले में छूट दी है कि अगर कंपनियां चाहें तो उनके अगर लॉ में ऐसा है तो वो किसी भी अपने एम्प्लॉयज को धार्मिक प्रतीक धारण करने से रोक सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है, और खासकर जिस तरह से आतंकवाद पूरी दुनिया में बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यह निर्णय दिया गया होगा। एक तथ्य के रूप में आपके दिमाग में यह होना चाहिए, अभी देखते हैं कि आगे किस रूप में बढ़ेगा। तो दोस्तों, न्यूज में बस इतना ही है, न्यूज़पेपर्स में आज कुछ खास नहीं है, चुनाव से ही संबंधित बातें हैं, तो उसकी जो चार पांच क्लिपिंग समय आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मित्रों, वो आप लोग देख लीजिएगा, और अभी वक्त भी नहीं है कि हम उसके किसी टॉपिक को लेकर के बातें करें। अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है मित्रों। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं, और खासकर मुझे कल बहुत से मेल अपने सिक्स बैच के स्टूडेंट्स के मिले हैं, जिसमें उन्होंने अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखा है, विस्तार से लिखा है। मित्रों, आप सबको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि जो परिवर्तन की प्रक्रिया आप सबके अंदर शुरू हुई है ये न केवल बनी ही रहे बल्कि उसकी गति भी तेज हो और ठोस रूप से वो सब आपके अंदर इकट्ठी हो जाए, मौजूद हो जाए, स्थायी रूप से घर कर लें। और इसी के साथ ही मैं सिक्स्थ बैच के स्टूडेंट से अपील भी करूंगा कि यदि वे सब ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स महसूस कर रहे हैं या उनके साथ के लोग इसके बारे में कुछ महसूस कर रहे हैं तो प्लीज उसके बारे में लिख कर भेजें, इससे हम लोगों को बहुत मदद मिलती है आगे की चीजों को प्लान करने में। तो दोस्तों, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, मोहम्मद अमीनुल्लाह, सिद्धार्थ, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब, पुनीत चंडीगढ़ से, अनिल कुमार भिवानी हरियाणा से, नीतू गुप्ता और मोहम्मद मजहर अंसारी। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त होता है, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।